स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 9 मार्च और दिन बुधवार। यमुना के किनारे आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर संशय बरकरार।
हम कह रहे हैं उस स्थान को हम इतना सुंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क बना के छोड़ेंगे, हमारे वॉलंटियर सब लगेंगे, हम लगे हुए 2010 से।
अफगानिस्तान ने कहा तालिबान से खुफिया बातचीत नहीं होगी। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान का मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। झारखंड के असुरों पर एक खास रिपोर्ट।
महिषा असुर हम लोग के पुरखा थे, उनका पुरखा का स्मरण हम लोग दीपावली में ही करते हैं। उनका कोई मूर्ति और ये नहीं बनाते, उनकी आत्मा को हम लोग पूजा करते हैं।
अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अजय शर्मा से। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे होने वाले आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। 11 मार्च से अगले दो दिनों तक होने वाले इस कार्यक्रम का पर्यावरण विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम से पर्यावरण को नुकसान होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आज भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। अमरीकी सेना अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने सीरिया में हवाई हमले के दौरान एक प्रमुख इस्लामिक स्टेट कमांडर को निशाना बनाया है। पेंटागन ने कहा कि जॉर्जियाई चरमपंथी ओमर अल शीशानी इस हमले में मारे गए हैं। ये हमले ड्रोन और दूसरे विमानों से किए गए, हालांकि उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अमरीकी सेना ने कहा है कि ओमर द चेचेन के नाम से मशहूर शीशानी को पिछले हफ्ते अल शाशादी शहर में भी निशाना बनाया गया था। शीशानी पर अमरीका ने $50 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश स्लोवेनिया ने प्रवासियों के लिए अपने देश की सीमाएं बंद कर दी हैं। स्लोवेनिया की सरकार ने कहा है कि ये प्रतिबंध आधी रात से लागू हो गए हैं। देश के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि अब केवल उन्हीं प्रवासियों को प्रवेश मिलेगा जो या तो शरण लेना चाहते हैं या जो मानवीय ज़रूरतों की वजह से उनकी सीमा तक आ गए हैं। उधर ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सी सिप्रास ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के तुर्की के साथ समझौते से यूरोप पहुँचने की कोशिश कर रहे लोगों की को रोकने में मदद मिलेगी। एक फ़लस्तीनी हथियारबंद हमलावर ने इसराइल के जाफा शहर में एक अमरीकी सैलानी की चाकू मारकर हत्या कर दी और 9 अन्य लोगों को ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी है। इससे पहले फ़लस्तीनियों के एक अन्य हमलों में 3 इसराइली ज़ख्मी हो गए थे। अमेरिका के कई राज्यों में मतदाता राष्ट्रपति चुनाव की प्राइमरी के लिए आज मतदान कर रहे हैं। इसमें मिशिगन राज्य भी शामिल है। ओपिनियन पोल में कहा गया है कि उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीनेटर ट्रेड क्रूज पर बढ़त हासिल है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी की दौड़ में सबसे आगे हिलेरी क्लिंटन अपने प्रतिद्वंद्वी सीनेटर बर्नी सैंडर्स से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी है कि वो लातिन अमेरिका के उन इलाकों में यात्रा ना करें जहां जीका वायरस का प्रकोप है, क्योंकि इस वायरस का बच्चों के जन्म संबंधी दोषों से संबंध साबित हो गया है। संगठन के मुताबिक रिपोर्टों से पता चला है कि यौन संक्रमण के जरिए भी इस वायरस के फैलने का खतरा है। एशिया के बड़े हिस्से में आज पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इस दौरान चांद सूर्य के ठीक सामने से गुजर रहा है, जिसकी वजह से कई जगह रात का सा एहसास होगा, मगर भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण ही रहेगा और पश्चिमी भारत में ये नहीं दिखाई देगा। जिम्बाब्वे से मिली खबरों के मुताबिक सरकार 16 साल पहले खेती पर नियंत्रण के दौरान जमीन खोने वाले किसानों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 9 तारीख और दिन बुधवार। खुद को आध्यात्मिक गुरु कहने वाले श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन पर्यावरणविदों ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि नदी के किनारे कार्यक्रम से पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। मामला नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने है। कल कार्यक्रम रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्राइब्यूनल ने केंद्र सरकार, डीडीए और आर्ट ऑफ लिविंग से कई सवाल पूछे हैं। उसमें आज भी सुनवाई होगी। सुनिए पूरी रिपोर्ट हरिता कांडपाल से।
दिल्ली में यमुना किनारे 11 मार्च से शुरू होने वाला आर्ट ऑफ लिविंग का विश्व संस्कृति महोत्सव अधर में लटका नजर आ रहा है। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के 35 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है, लेकिन पर्यावरणविदों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर सवाल उठाए हैं कि कार्यक्रम की तैयारियों से यमुना के माहौल को हमेशा के लिए नुकसान होगा। हालांकि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा कि उनकी संस्था नदी की सफाई में लगी है, न कि नदी को गंदा करने में।
हम कह रहे हैं उस स्थान को हम इतना सुंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क बना के छोड़ेंगे, हमारे वॉलंटियर सब लगेंगे। हम लगे हुए 2010 से, रोज 5000 वॉलंटियर हमारे यमुना के सफाई में लगे हुए थे। हम खुद गए, 512 टन इतने मल गंदगी, जर्किन, जूते, कपड़े सब हमने उसमें से निकाला।
कार्यक्रम रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस दिया है। कल सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों यमुना के किनारे अस्थायी ढांचा तैयार करने के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी नहीं है। कार्यक्रम स्थल पर सेना ने पंटून पुल बनाए हैं, जिस पर भी एनजीटी की नजर है। वहीं सुनवाई में डीडीए ने श्री श्री रविशंकर को कार्यक्रम की अनुमति देने का समर्थन किया है। सुनवाई के बाद बीबीसी ने याचिकाकर्ता, डीडीए और उनके वकीलों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मामला एनजीटी के सामने विचाराधीन है, इसलिए कोई भी इस पर बात करने के लिए राजी नहीं हुआ। हालांकि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
कोर्ट में बताया है, हमने एक भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, डीडीए ने बताया है।
कार्यक्रम की वेबसाइट के मुताबिक इसमें 155 देशों के लगभग 35 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसको देखते हुए यमुना के तट पर जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। आज एनजीटी दोबारा कार्यक्रम को लेकर सुनवाई करेगा, तो अब देखना यह है कि इतनी भव्य तैयारी को देखते हुए एनजीटी कोई रास्ता निकालता है या फिर कार्यक्रम अधर में लटक जाता है।
ये थी हरिता कांडपाल। अब ईपीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स नहीं देना होगा। कल केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की निकासी पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया। 29 फरवरी को आम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि की कुल राशि का 60% निकालने पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका श्रमिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी कोशिशों के कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने अस्तावा कंसल्टेंसी के डायरेक्टर कुमार अनिकेत से इस बारे में और बातचीत की।
ये जो फैसला है, बेसिकली इसका रीजन हमें समझना पड़ेगा। इसका रीजन ईपीएफ पे जो इन्होंने टैक्स लगाया था, उसका रीजन ये था कि ये नेशनल पेंशन स्कीम है। पेंशन जो है प्रोविडेंट फंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज रिटायर्ड आदमी के लिए वो जो है उसकी अलग एक महत्ता है। तो जो पेंशन फंड के बराबर लाने के लिए ईपीएफ पे टैक्स लगाया गया था, और इस पे इम्प्लाई जो कार्यकारी वर्ग है, कर्मचारी, उनका डिमांड ये था कि भाई हम जो सैलरीड इम्प्लाईज हैं, हम बहुत छोटा परसेंटेज है भारत की आबादी का, और बहुत ज्यादा हम कमाते भी नहीं है, हमारे इनकम पे हर चीज पे आप टैक्स लगा दे रहे हो। सो ईपीएफ विड्रॉल का सैलरीड इम्प्लाईज ने काफी विरोध किया था, और सेम वे ये आवाज जो है पॉलिटिकल अपोजिशन ने भी इसको पकड़ा और उठाया, और इसको इसलिए विड्रॉ किया गया है। और इस पे मेरा मानना ये है कि ये कोई पार्टी इसका नहीं ले सकती, ये पब्लिक आउटरेज का रिजल्ट।
क्या जिस तरह की दलील सरकार दे रही थी ईपीएफ पर कर लगाने की बात कहकर, वो क्या सही कदम था?
वो सही कदम था, मगर जो इनकी बात ये थी कि हम ईपीएफ पर प्रोविडेंट फंड को पेंशन स्कीम के बराबर में लाना चाहते हैं, बट उसका तरीका ये था कि आप पेंशन स्कीम के विड्रॉल पे से भी टैक्स हटा दो, ना कि ईपीएफ के विड्रॉल पे टैक्स लगा दो। सरकार जो गलत गई वो ये है कि जो इन्हें टैक्स की स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, जो काफी समय से ड्यू है, और सरकार का रीजनिंग का एक और रीजन आपको समझना पड़ेगा कि इस बार जो है नया वेतन आयोग लागू हुआ है। नए वेतन आयोग की वजह से सैलरीज में काफी इजाफा हुआ है, और सरकार को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो सरकार कहां से लाए? तो उसका तरीका सरकार ने निकाला कि हम ईपीएफ पे टैक्स लगा दे और एम्प्लाई पे टैक्सेस बढ़ा दे, डिविडेंड में आपने देखा। तो सरकार इसमें जो गलत गई, उसने ईपीएफ विड्रॉल जो हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है लोगों का, देखो सरकार ने ये कहा भाई आप प्रोविडेंट फंड पहले नहीं निकालना चाहिए, बट हम सही समझे प्रोविडेंट फंड लोग पहले क्यों विड्रॉ करते हैं? कोई सरकारी एम्प्लाई है उसकी बेटी की शादी है, प्राइवेट एम्प्लाई उसकी बेटी की शादी है, या ऐसा कुछ है उसका घर बनवाना है, इन पर्पसेस के लिए वो विड्रॉल पैसे विड्रॉ करता है, और उस पे टैक्स लगाना बहुत ही गलत है। बिकॉज आपने शुरू में आपको इनकम टैक्स में जो है पीएफ पे टैक्स लगा रखा था, मतलब पीएफ पे टैक्स आपने विड्रॉ कर रखा है, मगर अदरवाइज जो जिस स्पिरिट में इन्होंने पीएफ विड्रॉल को लाया था नेशनल पेंशन स्कीम के बराबर लाने के लिए, वो स्पिरिट का मैं सपोर्ट करता हूँ कि हाँ पीएफ जो है उसको पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम के बराबर लाना चाहिए।
नेशनल पेंशन स्कीम से आप अगर पैसा निकालते हैं तो उस पर भी कर लगता है, टैक्स लगता है, उसी के तहत जो है ईपीएफ पे भी लगना चाहिए था, ये आपका कहना है। तो इससे सरकार को क्या फायदा होता?
सरकार का फायदा ये होता कि सरकार चीजों को अगर आप सरकार एक नजरिए देना चाहती है कि भाई ये दोनों चीजें हमारे लिए बराबर है, पेंशन और प्रोविडेंट फंड, बल्कि अगर कहीं आता है तो पेंशन जो है हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है, पीएफ नहीं। अभी जो करंट लेजिस्लेशन है, चूंकि पीएफ विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगता है, तो इससे क्या होता है कि आपको समहाउ पीएफ जो है उसकी पोजीशन सुपीरियर है जो जनरल आदमी की टैक्स प्लानिंग है। बिकॉज अगर पीएफ पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, पीएफ विड्रॉल टैक्स फ्री है, तो आप पीएफ को आप इंपॉर्टेंस देंगे। और आप जब रिटायर हो गए, पीएफ का पैसा जो है आपको मान लो अपने पे मिल गया, अब पेंशन का जो पैसा है वो आपको नहीं मिला, पेंशन आपको धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। सो आप क्या करते हो कि वो पेंशन की पोर्शन को छोड़ के पीएफ पे ज्यादा जोर देते हो, और जब आदमी रिटायर होता है बुढ़ापे में, जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, उस समय प्रोविडेंट फंड तो उसका लास्ट में मिल गया, खर्च कर दिया उसने, पेंशन ही तो उसकी सब कुछ है ना, रिटायर्ड एम्प्लॉई। तो सरकार की जो सोच थी वो सोच एक सही दिशा में कदम थी, मैं ये कहना चाहता
हूं। बस सरकार क्या अगला कदम उठा सकती है इसकी भरपाई करने के लिए?
सरकार को नेशनल पेंशन स्कीम पे भी टैक्सेस जो है वो हटाने पड़ेंगे विड्रॉल पे, जो अगर बराबर लाना है तो सोच तो सही थी। तो अब अगर आप पीएफ विड्रॉल पे टैक्स नहीं लगा रहे हो तो एनपीएस पे भी मत लगाओ।
ये थे कुमार अनिकेत। और अब बात क्रिकेट की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विश्व कप 2020 टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अनिश्चितता के बादल अब काफी हद तक छटते नजर आ रहे हैं। टूर्नामेंट के निदेशक एमवी श्रीधर ने दावा किया है कि मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। सुनिए आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
सीधा विकेट पर दूसरी गेंद, दोनों गेंदों पर बहुत जोरदार अपील, वापस जाते हुए रोहित शर्मा दो गेंदों में।
ये लम्हे थे भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों बांग्लादेश में खेले गए एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के, और कल दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों बीसीसीआई और पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तब खुशी और राहत की सांस ली जब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाले भारत पाक मैच को पाकिस्तान की ओर से हरी झंडी मिल गई। सुरक्षा इंतजामों का मुआयना करने भारत आई पाकिस्तानी जांच टीम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में मैच के लिए अपनी सहमति दे दी। उल्लेखनीय कि आईसीसी विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में शुरू हो चुका है और 19 तारीख को धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार इस मैच की सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती। इसके बाद पीसीबी के अध्यक्ष शहरयार खान ने भी अपनी चिंता जताते हुए कहा था,
हमारी टीम आ रही है, उसकी सिक्योरिटी कि आप बंदोबस्त करें, आप पूरी तरह से सिक्योरिटी दें, जैसे हमने 2004 और 2006 में यहाँ पर दी थी इंडियन टीम को। मुझे यकीन है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो तो यही चाहेगी कि हम वहाँ जाके खेलें मैचेस। बहुत इंटरेस्ट है हिंदुस्तान में भी, यहाँ पर भी, बांग्लादेश में बहुत इंटरेस्ट। अभी मैं आया हूँ बांग्लादेश से, बहुत इंटरेस्ट है। और ये जो मैच हुआ था वो तो फुल्ली बुक था, यानी स्टेडियम जो था पूरा भरा हुआ था।
इसी बीच विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के निदेशक एमवी श्रीधर ने भी कहा कि मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा।
The district administration has very clearly categorically stated that they are committed to giving complete security, not just for...
जिला प्रशासन ने बेहद साफ कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की ही नहीं बल्कि धर्मशाला में होने वाले सभी मैचों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया गया है और ये संदेश पाकिस्तानी जांच दल को भी दे दिया गया है। एमवी श्रीधर के शब्द। तो आशंका के बादल छट गए भारत पाक मैच से, लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री चौधरी निसार अली खान जांच टीम की समीक्षा रिपोर्ट पर अंतिम फैसला करेंगे।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। और अब बात उनकी जिन खबरों पर रहेगी आज सबकी नजर।
भाजपा नेता अरुण जेटली की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ लगाए गए मानहानि केस में आज अदालत कोई फैसला ले सकती है। जेटली ने पिछले साल 21 दिसंबर को आपराधिक मानहानि केस दर्ज कराया था। ये केस DDCA विवाद में उनकी कथित मानहानि को लेकर किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र में सूखा और किसान आत्महत्या के मामलों के उठने की संभावना है। इससे पहले मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने सूखा प्रभावित इलाकों में एक दिन का दौरा किया था और हालात का जायजा लिया था। ICC T20 वर्ल्ड कप के दूसरे दिन आज दो मैच खेले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज बांग्लादेश की टीम नीदरलैंड से भिड़ेगी तो आयरलैंड और ओमान के बीच मुकाबला होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ आज सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। वहां वो नॉर्थ थंडर के नाम से चल रहे सैन्य अभ्यास के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। कई देशों के सरकारी प्रमुखों को भी इस आयोजन में बुलाया गया है। सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान समेत 21 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। सीरिया में संघर्ष विराम को लेकर बातचीत आज से फिर शुरू होगी। जिनेवा में सीरिया के विशेष राजदूत की ओर से कहा गया कि स्टेफान दी मिस्तुरा बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वहां व्यावहारिक मामलों को लेकर बात हो सके। इससे पहले 3 फरवरी को हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार और विपक्षी ताकतें किसी राजनीतिक नतीजे तक नहीं पहुँच पाए थे। आज पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है लेकिन भारत में इसे आंशिक तौर पर ही देखा जा सकेगा। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हिस्सों में नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण सुबह 5:47 पर शुरू होगा और 10:05 तक रहेगा।
यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में अब स्लोवेनिया ने कहा है कि वो आज से प्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं कड़ी कर रहा है। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को घुसने की इजाज़त सिर्फ मानवीय वजहों से या फिर शरण लेने का दावा पेश करने वालों को ही मिलेगी। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए अजय शर्मा से।
स्लोवेनिया ने ऐलान किया है कि वो प्रवासियों के उसके देश में घुसने पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। अब वो केवल उन्हीं प्रवासियों को प्रवेश देगा जो या तो देश में शरण चाहते हैं या जो मानवीय कारणों से सीमा तक पहुंच गए हैं। प्रवासी अब तक EU सदस्य देश स्लोवेनिया के रास्ते जर्मनी और दूसरे उत्तर यूरोपीय देशों तक पहुंचते रहे हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मीरो सेरार ने कहा कि इससे प्रवासियों के लिए बाल्कन का रास्ता बंद हो जाएगा। बाल्कन का रास्ता बंद हो रहा है, इसका मतलब है कि इस रास्ते पर आने वाले ग्रीस समेत सभी मुल्क तुर्की की मदद से सभी अनियमित प्रवासियों को वापस भेज देंगे। ये लोग अब बाल्कन के रास्ते तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक उन्हें तस्कर ही न ले जाएं। जाहिर है कि बाल्कन रूट पर मौजूद सभी देश इसे रोकने के लिए सभी कानूनी तरीके अपनाएंगे। ये थे स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मीरो सेरार। उधर ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्स सीप्रास ने कहा कि तुर्की और यूरोपियन यूनियन के समझौते से यूरोप आने वालों का नाकाबिले बर्दाश्त बहाव रोकने में मदद मिलेगी। प्रवासियों के लिए ग्रीस एक अहम प्रवेश द्वार की तरह है। समझौते के तहत तुर्की ग्रीस के द्वीपों पर पहुंचे सभी अवैध प्रवासियों को वापस लेगा और बदले में EU उतने ही सीरियाई प्रवासियों को तुर्की के शिविरों से लेकर उनका पुनर्वास करेगा। सीप्रास के मुताबिक यूरोप बड़ी तादाद में उन देशों के प्रवासी नहीं ले सकता जहां जंग के हालात नहीं हैं।
Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα, οι δύο κυβερνήσεις, εγώ και ο Αχμέτ, για να δηλώσουμε από κοινού.
आज दो देशों के प्रतिनिधियों के बतौर मैं और मेरे दोस्त अहमद जोर देना चाहते हैं कि ईजियन सागर में हुई घटनाएं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से शर्मनाक हैं। हम यहाँ एक समस्या के हल के लिए हैं जिसका ताल्लुक दो मुल्कों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों से है। यह समस्या हमारे सहयोग से ही हल होगी। कोई हमें ये आदेश नहीं दे सकता कि इसका समाधान कैसे निकालना है। इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। ये थे ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्स सिप्रास। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था के मुताबिक लोगों को अपनी सीमाओं से लौटाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। UNHCR के प्रवक्ता विलियम स्पिंडलर ने BBC से कहा कि यूरोपियन यूनियन अपने ही फैसलों को लागू नहीं कर रही है।
They have not really done what they set out to do. I mean, a lot of important decisions were taken.
उन्होंने असल में वही नहीं किया जो उन्हें करना था। मेरा मतलब है कि कई अहम फैसले पिछले साल लिए गए थे, मिसाल के लिए ग्रीस से शरण मांगने वालों को दूसरी जगह भेजना। अगर ऐसा किया गया होता तो हालात शायद बेहतर होते। इसलिए हमें नए तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं। वो मौजूद हैं पर बहुत कम लोगों को ग्रीस से दूसरी जगह भेजा गया है। हमें पहले से मौजूद चीज़ें लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। UNHCR के प्रवक्ता विलियम स्पिंडलर के शब्द साफ है। बेशक तुर्की और यूरोपियन यूनियन प्रवासी संकट को लेकर हुए इस समझौते को बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता जताई है।
یہ تھے اجے شرما. پاکستان میں افغانستان کے راجدوت اور افغانستانی راشٹرپتی کے خاص دوت حضرت عمر زاخلوال نے طالبان سے کسی بھی گپ چپ سمجھوتے کی سمبھاونا سے انکار کیا ہے. بی بی سی اردو کے ہارون رشید سے انہوں نے خاص بات چیت کی. ہارون رشید نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ اس طرح کی خبریں ہیں کہ طالبان آدھیکارک طور پر تو بات چیت سے انکار کر رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر خفیہ بات چیت جاری رکھیں گے, کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو ان کا کہنا تھا,
Before I come to the future or the statement, Taliban hugely discredited themselves.
طالبان نے مذاکرات سے انکار سے اپنا وقار کم کیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو امن کا داعی قرار دے رہے تھے. غیر ملکی فوجیں تو کم ہوئی تھیں اور ان کے مکمل انخلا کا وقت بھی آ گیا تھا, ساتھ میں طالبان کے تشدد میں بھی کمی آنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا, عوامی مقامات کو نشانہ بنایا. ہم نے تو مذاکرات کے لیے اپنی تمام شرائط ختم کر دی تھیں, غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہوئے تھے. افغان حکومت پر بھی دباؤ تھا کہ ان لوگوں سے مذاکرات نہ کریں جو خودکش حملے کرتے ہیں, اور طالبان کی یہ شرائط تو مذاکرات میں بھی زیر بحث آ سکتی ہیں. مذاکرات کا کیا فائدہ اگر سب شرائط پہلے ہی مان لی جائیں؟ میں جانتا ہوں کہ اکثر طالبان, کم سے کم جنہیں میں جانتا ہوں, امن چاہتے ہیں. ان کے بھی بچے ہیں, خاندان ہیں اور جنگ سے تنگ ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ان پر حاوی ہو جائیں گے جو امن نہیں چاہتے اور لڑائی کے ذریعے کامیابی کی خواہش رکھتے ہیں.
کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ شاید یہ جو طالبان نے انکار کیا ہے یہ ایک عوامی سطح پر سٹیٹمنٹ ہے, لیکن چھپ کے یا پس پردہ مذاکرات اور رابطے ضرور ہوں گے. آپ پر امید ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے؟
Even if that is the case, we don't know. Even if that's the case, we the Afghan government will not engage in secret negotiation.
ہمیں یعنی افغان حکومت کو اس کا علم نہیں, لیکن ہم خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے. اس سے بد اعتمادی بڑھتی ہے. ہم شفاف مذاکرات کریں گے کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ انہیں معلوم ہو. اگر نیک نیتی سے بھی ہوں تب بھی ایسے خفیہ مذاکرات کا تاثر عوام میں اچھا نہیں ہوتا. خفیہ مذاکرات سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, سیاسی بھی اور عوامی سطح پر بھی.
یہ تھے پاکستان میں افغانستان کے راجدوت حضرت عمر زاخلوال. اور اب وقت ہو چلا اخباروں کی سمیکشا کا, اور ہمارے ساتھی اجے شرما اخباروں کے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیں.
جی, جو زیادہ تر اخباروں کی جو پرمکھ خبر ہے وہ ای پی ایف نکالنے پر اب نہیں لگے گا ٹیکس, اس کو لے کر بنائی گئی ہے. اور اس میں جیسے نئی دنیا اخبار نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جنا دھار کھسکنے کی چنتا اور چوطرفہ ورودھ کے بعد وت منتری نے یہ سنسد میں گھوشنا کی اور یہ ایک نیا راستہ نکالا. دوسری خبر جو ہے وہ شری روی شنکر کے آرٹ آف لیونگ کا جو پروگرام تھا اس کو لے کر ہے, جو پرمکھتا کے ساتھ پہلے پنے پر دکھ رہی ہے کہ اس کو لے کر این جی ٹی نے کیندر اور ڈی ڈی اے کو پھٹکار لگائی ہے.
جی.
اور ایک جو دوسری اہم خبر ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم کے آنے کا کاریکرم جو ہے وہ پھر ٹلا ہے, اس طرح سے ایک خبر امر اجالا نے لی ہے. جو دھرم شالہ میں ان کا میچ ہونے والا تھا اس کو لے کر یہ خبر ہے.
حالانکہ ابھی تو ہم لوگوں نے یہ خبر چلائی ہے کہ
جی
شاید یہ معاملہ کم و بیش سلجھا لیا گیا ہے.
جی
جی.
اور مالیا کو ودیش جانے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں 17 بینک, اس طرح کی یہ خبر دینک بھاسکر کے پہلے پنے پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکوں کے کنسورٹیم کو وجے مالیا اور ان کی بند پڑی ہوئی کنگ فشر ایئر لائنز سے 7,800 کروڑ روپے وصولنے ہیں. تو یہ آج کی پرمکھ خبر ہے. اور اس کے علاوہ نو بھارت ٹائم سے مجھے ایک چھوٹی سی خبر دکھ رہی ہے جو کہ ایک الگ سے باکس میں پیش کی گئی ہے کہ یو پی کے ودھان سبھا چناؤ میں شیلا دکشت کو سی ایم کینڈیڈیٹ بنائے گی کانگریس, اس طرح کی ایک
ایکٹ. بہت جی شکریہ اجے آپ کا اخباروں کی سمیکشا کے لیے. اور اب آج کی ایک خاص رپورٹ. جھارکھنڈ میں قریب 8,000 اسر ہیں. یہ مہیسا سر کو اپنا پرکھا مانتے ہیں, انہیں پوجتے ہیں. ہندوؤں کی درگا پوجا ان کے لیے مہیسا سر کی شہادت کا موقع ہے. اس کارن پچھلے دنوں سنسد میں مانو سنسادھن وکاس منتری اسمرتی ایرانی کے مہیسا سر سے سمبندھت دیے گئے بیان کو یہ نسلی ٹپنی مانتے ہیں. دیش کی 18 آدم جنجاتیوں میں کبھی سب سے اوپر رہنے والے اسوروں کی سنکھیا دنوں دن گھٹتی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ انہیں سنرکشن کی ضرورت ہے. رانچی سے سنیے روی پرکاش کی ایک خاص رپورٹ.
یہ اسوروں کا لوک گیت ہے. पर असुर बचे तो झारखंड की मनोरम वादियों में ऐसे गीत भविष्य में भी सुनाई पड़ेंगे। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में 10,347 असुर थे। 2011 आते आते इनकी संख्या घटकर 8,000 हो गई। यह संख्या लगातार घट रही है क्योंकि इन असुरों को जिंदगी चलाने के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाएं भी मयसर नहीं। सखुआ पानी के रविनंदन असुर ने बताया कि आमता पानी में उनकी ही जमीन पर बॉक्साइट की माइंस है। ठेकेदारों ने इसे पट्टे पर ले लिया है, अब उन्हें यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है।
यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर सारे हमारे समुदाय के ठग करके सारा बॉक्साइट खनन कर ले जाया जा रहा है, हम लोग को इतना कम रुपये मिल रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या लगती है। इतने हम लोग इतने रुपये के ऊपर बैठे, सोना चांदी के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोग गरीब के गरीब।
गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड में है सखुआ पानी। यहीं रहती हैं असुर समुदाय की जानी मानी एक्टिविस्ट सुषमा असुर। सुषमा कवियत्री हैं और देश की विभिन्न मंचों पर असुरों की वकालत करती हैं। उन्होंने फेसबुक पर आदिवासी विजडम डॉक्यूमेंट्रीज इनिशिएटिव नामक पेज बनाया है। इस पर असुरों से संबंधित कई जानकारियाँ मौजूद हैं। इसी पेज पर उन्होंने स्मृति ईरानी के नाम एक संदेश लिखकर महिषासुर से संबंधित उनकी टिप्पणी को नस्लीय करार दिया है। सुषमा असुर का मानना है कि दुर्गा पूजा का त्यौहार महिषासुर स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए।
जी, हमारे समुदाय में, असुर समुदाय में महिषासुर हम लोग के पुरखा थे, उनका पुरखा का स्मरण हम लोग दीपावली में ही करते हैं। उनका कोई मूर्ति और ये नहीं बनाते, उनकी आत्मा को हम लोग पूजा करते हैं। हमारे महिषासुर का जब वध किया गया तो वो दुर्गा पूजा नहीं मनाना चाहिए, जहाँ तक हो कि हम लोग उसी के वंशज हैं।
आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ और पत्रकार अश्विनी कुमार पंकज ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि असुरों ने ही दुनिया को धातुओं से परिचित कराया था। लोहा और स्टील इनकी खोज है, इनके द्वारा बनाए गए लोहे में जंग नहीं लगता। पंकज आरोप लगाते हैं कि सभ्य समाज ने असुरों से उनकी तकनीक तो ले ली, लेकिन उनके संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया।
झारखंड में अभी लगभग 8,000 की आबादी है असुरों की, जो बहुत ही खराब सामाजिक आर्थिक अवस्था में है। उनके ऊपर चौतरफा हमला है, उनकी भाषा लुप्त हो रही है, उनकी संस्कृति लुप्त हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो उनके पास जो एक अनमोल टेक्नोलॉजी है लोहा बनाने की, जो जिसमें जंग नहीं लगता है ना, और जिससे प्रकृति का दोहन नहीं होता है, वो कला भी जो है लुप्त होने के कगार पे है।
असुरों पर शोध कर रहे पत्रकार और फॉरवर्ड पेस पत्रिका के संपादक प्रमोद रंजन ने बीबीसी को बताया कि न केवल जेएनयू बल्कि देश के करीब 300 जगहों पर महिषासुर की पूजा औपचारिक तौर पर की जाती है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बहरहाल इस बात पर डिबेट हो सकती है कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू महिषासुर की पूजा को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं, लेकिन इस तथ्य में किसी डिबेट की गुंजाइश नहीं कि झारखंड में असुरों की संख्या लगातार घट रही है। अगर समय रहते इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई तो आने वाला समय इन्हें सिर्फ इतिहास और समाजशास्त्र की किताबों में ही खोज पाएगा। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए नेतरहाट में।
तो रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके खतों का इंतज़ार रहता है। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे होने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अमरीकी सेना अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने सीरिया में हवाई हमले के दौरान एक प्रमुख इस्लामिक स्टेट कमांडर उमर अल शीशानी को निशाना बनाया है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश स्लोवेनिया ने प्रवासियों के लिए अपने देश की सीमाएँ बंद कर दी हैं। एक फलस्तीनी हथियारबंद हमलावर ने इसराइल के जाफा शहर में एक अमरीकी सैलानी की चाकू मारकर हत्या कर दी और 9 अन्य लोगों को जख्मी कर दिया। अमेरिका के कई राज्यों में मतदाता राष्ट्रपति चुनाव की प्राइमरी के लिए आज मतदान कर रहे हैं, इसमें मिशिगन राज्य भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी है कि वो लातिन अमेरिका के उन इलाकों में यात्रा ना करें जहां जीका वायरस का प्रकोप है। एशिया के बड़े हिस्से में आज पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, मगर भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण ही रहेगा और पश्चिमी भारत में ये नहीं दिखाई देगा। जिम्बाब्वे से मिली खबरों के मुताबिक सरकार 16 साल पहले खेती पर सरकारी नियंत्रण के दौरान जमीन खोने वाले किसानों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति के लिए खास तौर पर बनाई गई एक एस्टन मार्टिन लग्जरी स्पोर्ट्स कार नीलाम हो रही है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन आप पल पल बदलती खबरों के लिए आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।